किसी को क्रमशः अपने भाव पद्धति पर लाना थोड़ा बहुत जिसे कुछ भी बात करना आता है उसे ही आता है। जिस प्रकार अपने विचार पद्धति पर लाने के लिए क्रमशः प्रमाण देते जाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्रमशः किसी के हृदय को किसी भाव पद्धति पर लाने के लिए उसके अनुकूल मनोविकार उत्पन्न करते चलने की आवश्यकता होती है। राम के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न करने के लिए मंथरा सपत्नी को सामने रखती है, जिसके गर्व और अभिमान को न सह सकना स्त्रियों में स्वाभाविक होता है। सपत्नी के घमंड की बात जी में आने पर कहाँ तक ईर्ष्या न उत्पन्न होगी। इस ईर्ष्या के साथ भरत के प्रति वात्सल्य भाव भी तो कुछ जगाना चाहिए। इस विचार से फिर मंथरा कहती है, पूत विदेशु न सोच तुम्हारे, जानती रहु बस ना हो हमारे। इतना होने पर भी राजा की कुटिलता के निश्चय द्वारा जब तक राजा कुछ क्रोध उत्पन्न न होगा तब तक कैकेयी में आवश्यक कठोरता और दृढ़ता कहाँ से आएगी। कैकेयी के मन में यह बात जम जानी चाहिए कि भरत जानबूझकर हटा दिए गए हैं। इसके लिए ये वचन हैं, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। इस पर कैकेयी जब कुछ फटकारती हैं और बार बार उसके खेत का कारण पूछती हैं, तब वह ऐसा खेत प्रकट करती है जैसा उसको होता है जो किसी से उसके परम हित की बात करना चाहता है, पर वह उसे केवल तुच्छ या छोटा समझकर ध्यान ही नहीं देता। उसके वचन ठीक ये ही हैं जो ऐसे अवसर पर स्त्रियों के मुख से निकलते हैं, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। फोरई जोग कपार अभागा, भलेउ कहत दुख रहेउ री लागा। कहई झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हई करउ मैं माई। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। करी कुरूप विधि परबस खीन्हा, बवास लुनिय लहिय जो दीन्हा। मंथरा अब अपने उस भाग्य को दोष दे रही हैं जिसके कारण वह ऐसी कुरूप हुई। दासी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी बात की कोई कुछ कद्र ही नहीं करता। वह अच्छा भी कहती है तो लोगों को बुरा लगता है। विश्वास न करने वालों के सामने कुछ तटस्थ होकर अपने भाग्य को दोष देने लगना विश्वास उत्पन्न करने का एक ऐसा ढंग है जिसे कुछ लोग विशेषतः स्त्रियां स्वभावतः काम में लाती हैं। इससे श्रोता का ध्यान उसके खेत की सच्चाई पर चला जाता है और फिर क्रमशः उसकी बातों की ओर आकर्षित होने लगता है। इस खेत की व्यंजना प्रायः उदासीनता के द्वारा की जाती है, जैसे हमें क्या करना है, हमने आपके भले के लिए कहा था। कुछ स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है कि किसी का अहित देखा नहीं जाता। मंथरा के कहे हुए खेत व्यंजन उदासीनता के सुनते ही झगड़ा लगाने वाली स्त्री का रूप सामने खड़ा हो जाता है। को नृप होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। जा रही जोग सुभाव हमारा, अनभल देख ही न जाए तुम्हारा। अब तो कैकेयी को विश्वास हो रहा है, यह देखते ही राम के अभिषेक से होने वाली कैकेयी की दुर्दशा का चित्र खींचती है और वह भी कहती जाती है कि राम का तिलक होना मुझे अच्छा लगता है। राम में कोई द्वेष नहीं है, पर आगे तुम्हारी क्या दशा होगी यही सोचकर मुझे व्याकुलता होती है। राम ही तिलक काली जौ भयउ, तुम कहूँ विपति बीज विधि भयउ। रेख खचाई कहूँ बलु भाखी, भामिनी भई हु दूध कई माखी। जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहू न आन उपाई। इस भावे दृश्य की कल्पना से भला कौन सी स्त्री शुद्ध न होगी। किसी बात पर विश्वास करने या न करने की भी मनुष्य की रुचि नहीं होती है। जिस बात पर विश्वास करने की मनुष्य की रुचि नहीं होती उसके प्रमाण आदि को वह सुनता ही नहीं, सुनता भी है तो ग्रहण नहीं करता। मंथरा ने पहले अपनी बात पर विश्वास करने की रुचि भिन्न भिन्न विकारों के उद्दीपन द्वारा कैकेयी में उत्पन्न की। जब यह रुचि उत्पन्न हो गई तब स्वभावतः कैकेयी का अंतःकरण भी उसके समर्थन में तत्पर हुआ। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति कु सपने, कहऊं न तो ही मोह बस अपने। काह करो सखी सूध सुभाउ, दाहिन बाम न जानऊं काऊ। इस प्रकार जो भावी हृदय मन में जम जाता है उससे कैकेयी के हृदय में घोर नैराश्य उत्पन्न होता है। वह कहती है, नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबि सवति सेवकाई। अरे बस देव जियावत जाही, मरनु नीक तही जीवन चाही। इस दशा में मंथरा उसे संभालती है और इस कार्य में तत्पर करने के लिए आशा बंधती हुई उत्साह उत्पन्न करती है। जे ही राउर अति अनभलता का सोई पाई ही यह फल परिपाका। पूछे हो गुनिन रेख तिन खाची, भरत भुआल हो ही यह साची। इस प्रसंग के चित्रण को यह देखकर समझा जा सकता है कि गोस्वामी जी ने मानव अंतःकरण के कैसे कैसे रहस्यों का उद्घाटन किया है। ऐसी गूढ़ उद्भावना बिना सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के नहीं हो सकती। बालकों की प्रवृत्ति का चित्रण हम परशुराम और लक्ष्मण के संवाद में पाते हैं। अकारण चिढ़ने वालों को चिढ़ाना बालकों के स्वभाव के अंतर्गत होता है। चिड़चिड़े लोगों को दबा करने का भार मानव समाज ने बालकों को ही दे रखा है। राम के विनय करने पर भी परशुराम को जो ही लक्ष्मण चिढ़ते देखते हैं त्यों ही उनकी बाल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था, इससे उस कौतुक के बीच बीच में क्रोध का भी आभास हमें मिलता है। परशुराम की आकृति जब अत्यंत भीषण और वचन अत्यंत कटु हो जाते हैं तब लक्ष्मण के मुंह से व्यंग वचन न निकलकर अमर्ष के उग्र शब्द निकलने लगते हैं। परशुराम जब कुठार दिखाने लगे तब लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया और बोले, भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र विचारी बचाऊ नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। गोस्वामी जी ने लक्ष्मण की इस बाल वृत्ति को लोक व्यवहार से बिल्कुल अलग नहीं रखा है, इसे परशुराम की क्रोधशीलता की प्रतियोगिता में रखा है। यह भी अपना लोकोपयोगी स्वरूप दिखा रही है। यदि परशुराम मुनियों की तरह आते जो शांत और क्षमाशील होते हैं तो लक्ष्मण को अवसर न मिलता। रामचंद्र जी कहते हैं, जो तुम ओते हु मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहिय विप्र उर कृपा घनेरी।